नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आईटी कंपनी इंफोसिस ने आने वाली तिमाहियों में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर में कमी आने की उम्मीद जताई है। कंपनी के सीईओ सलिल पारेख ने पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कर्मचारियों के साथ संपर्क, प्रशिक्षण और वेतन वृद्धि के कंपनी के प्रयासों के नतीजे सामने आने लगे हैं। आगामी तिमाहियों में कर्मचारियों के कंपनी से बाहर जाने की दर में कमी आएगी। कर्मचारियों की कंपनी छोड़ने की दर में वृद्धि और नियुक्ति की लागत बढ़ने के बीच इंफोसिस के शीर्ष अधिकारी ने ये बात कही। पारेख ने कहा कि इंफोसिस के लिए तिमाही आधार पर कर्मचारियों के लिए कंपनी छोड़ने की दर में सुधार का संकेत दिखना शुरू हो गया है। सीईओ ने कहा कि कंपनी को लगता है कि हर तिमाही के गुजरने के साथ स्थिति अधिक से अधिक नियंत्रण में आ रही है। इंफोसिस के कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर जून 2022 की तिमाही में बढ़कर 28.4% हो गई, जो इससे पिछले तिमाही में 27.7% थी। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी मूल्य में संशोधन पर रोक का असर पेट्रोलियम कंपनी पर दिखने लगा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने बुधवार को कहा कि इस वजह से चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुनाफा प्रभावित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं ने 4 महीने से अधिक समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। उच्च मुद्रा स्फीति को काबू में करने के लिए सरकार की कोशिशों में मदद के लिए ऐसा किया गया। कर्नाटक के बड़े एवं मध्यम उद्यम मंत्री मुरुगेश आर निरानी की अध्यक्षता में राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल जापान के 3 दिवसीय दौरे पर गया है, जहां उन्होंने कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक में 2, 3, 4 नवंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान की कंपनियों को औपचारिक रूप से निमंत्रित किया। इस दल में शामिल औद्योगिक विकास आयुक्त गुंजन कृष्ण ने सोमवार और मंगलवार को टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में टोयोटा, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, मित्सुई, मर्क्यूरी, जेट्रो, हिताची, फुजित्सु लिमिटेड और NEC कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। निरानी के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया, औद्योगिक विभाग के तुमाकुरु जिले में करीब 600 एकड़ भूखंड पर एक अलग जापानी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव दिया है। वैश्विक बाजारों में गिरावट के रुख के अनुरूप दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 60 रुपए टूट कर 52,811 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु का भाव 52,871 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। चांदी भी 575 रुपए के नुकसान से 58,985 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी कोषों के प्रवाह से दोपहर के सत्र में रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 79.52 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के साथ $1,789 प्रति ऑन्स पर था। चांदी $20.35 प्रति ऑन्स पर स्थिर थी। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, कॉमेक्स में बुधवार को सोना $1,779 प्रति ऑन्स पर कमजोर था, इससे यहां भी सोने में गिरावट आई। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 47.7% बढ़कर 4,119 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आदित्य बिरला समूह की धातु कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने बुधवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में ये जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में कंपनी ने 2,787 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी की परिचालन आय भी 2022-23 की पहली तिमाही में बढ़कर 58,018 करोड़ रुपए हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 41,358 करोड़ रुपए थी। हिंडाल्को के प्रबंध निदेशक सतीश पाई ने कहा, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रा स्फीति दबाव के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC को 65.83 करोड़ बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया कि इस बोनस निर्गम में 658.30 करोड़ रुपए के पूंजी भंडार का उपयोग होगा। REC ने शेयर बाजारों को बताया, कंपनी के 8 जुलाई 2022 के डाक मतपत्र नोटिस में निर्धारित 2 प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत के साथ शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने शेयरधारकों को मौजूदा 3 शेयर के लिए एक नया शेयर जारी करने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी के शेयरधारकों ने विवेक कुमार देवांगन को चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की भी अपनी मंजूरी दी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कहा है कि उसने जरूरी मामलों की सुनवाई को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की। कथित अधिसूचना में कहा गया है कि सदस्यों की कमी के कारण केवल जरूरी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन होगी। NCLT ने सोशल मीडिया मंचों पर अधिसूचना जारी होने के मद्देनजर मंगलवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया। 8 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया कि सदस्यों की कमी है, कुछ सदस्यों के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारणों से अवकाश लेने से समस्या और बढ़ गई है। सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई पीठ में सुनवाई कर रहे हैं और ये निर्णय किया गया है कि अगले आदेश तक केवल जरूरी मामलों की सुनवाई न्यायाधिकरण के सभी पीठों में ऑनलाइन होगी। न्यायाधिकरण ने 9 अगस्त को एक बयान में कहा, उक्त अधिसूचना NCLT ने जारी की है और वह प्रामाणिक नहीं है। बयान के अनुसार 8 अगस्त को जारी तथा कथित अधिसूचना को NCLT के अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।